देखिए काफी लोग बहुत यहाँ पर लोगों को बहुत अफसोस है कि कुलदीप नैयर साहब चले गए हैं। हालांकि उम्र उनकी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, 95 बरस के वो थे और बहुत लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे, निमोनिया उनको हो गया था। लेकिन जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है सहाफत की दुनिया में वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उनकी तरह के सहाफी अब बहुत ज्यादा होते नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की बेबाक सहाफत वो करते थे और जिस बेखौफ अंदाज में वो अपनी बातें लिखते थे वो बहुत कम देखने को मिलता है। मैं आपको एक एक वाकया बताती हूँ। जब इमरजेंसी भारत में लागू की गई थी उस वक्त बड़े बड़े सहाफियों ने घुटने टेक दिए थे और मीडिया के रोल को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन कुलदीप नैयर उन चंद लोगों में से थे जो उस वक्त भी अपनी आवाज बुलंद करते रहे, सरकार के खिलाफ बोलते रहे, हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे और उनको जेल भी जाना पड़ा था। और ये जज्बा उनमें आखिर तक कायम रहा कि कभी भी उन्होंने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे वो जाने जाते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बेहतरी के लिए वो बहुत काम करते थे। उनको लगता था कि दोनों मुल्कों के बीच अमन और दोस्ती ही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। तो हर तरह से वो एक और कॉलमिस्ट वो बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान के कई अखबारों के लिए उन्होंने बहुत कॉलम्स लिखे हैं। तो एक जिसको कहते हैं कि एक कंप्लीट जर्नलिस्ट वो थे और एक बेहतरीन एडिटर के तौर पर भी उनकी पहचान थी।
जी हाँ, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में उनका बड़ा मुस्बत रवैया था और कई दफा उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ के जो हलके हैं सहाफती और सिफारती और हुक्मरानों से उनके ताल्लुकात भी अच्छे रहे। तो इस हवाले से पाकिस्तान में भी उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और क्या आप समझती हैं कि जो उनकी कोशिशें थीं वो अब बराबर होंगी और उन पर कोई मुस्बत रद्द अमल जाहिर किया जाएगा?
देखिए, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि वो कई बार उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। सन 2000 से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था कि वो भारत और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डेज जो होते हैं 14 और 15 अगस्त, वो वाटर पे जाते थे वाघा अटारी और पीस एक्टिविस्ट का एक डेलीगेशन लेके जाते थे और सैटेलाइट विजिल वहां से किया करते थे। अब जब तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा इनका जाना रुक गया था, लेकिन अब इस तरह की कोशिशें फिलहाल तो हमको कोई बॉर्डर पे होती देखी दिखती नहीं है। और कुलदीप नैयर साहब इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड थे कि उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़कर वहां जाना चाहते थे और वो कैदियों को लेकर जो दोनों मुल्कों की जेलों में कैदी हैं जिनको बहुत वक्त रिहा नहीं किया गया है उनके लिए उन्होंने बड़ा लंबा काम किया है। तो उनकी बड़ी हमेशा से, और देखिए क्योंकि पैदाइश उनकी खुद सियालकोट की थी तो अपनी पैदाइशी जमीन को वो कभी भूले नहीं थे। बहुत खुलूस उनके दिल में पाकिस्तान के लिए आखिर तक रहा। और सबसे बड़ी चीज जो थी, इतने सबके बाद भी जब क्रिटिसाइज करने की बात आती थी तब भी वो पीछे नहीं हटे। 71 वॉर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को जमकर क्रिटिसाइज किया कि उसने फौज की ज्यादतियों के लिए अपोलोजाइज नहीं किया, और इसी तरह से वो भारतीय हुकूमत और उसकी खामियों को भी उसी तरह से सामने लाते थे और क्रिटिसाइज करते थे। मैं अपना एक छोटा सा एक ज्यादती एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। हम दोनों एक बार एक सेमिनार में साथ चंडीगढ़ में थे और वो लगातार नए जर्नलिस्ट को ये बता रहे थे कि आप सरकार के खिलाफ बोलिए। तो उस वक्त मैं थोड़ा उलझ पड़ी उनसे कि हर वक्त खिलाफ बोलना क्या जरूरी है, आप पॉजिटिव चीजें भी तो दिखा सकते हैं। तो उन्होंने पलट के मुझे कहा, यंग लेडी, पॉजिटिव चीजें तो पता चल ही जाती हैं, लेकिन हमारा काम नजर बनाना है। तो एक वॉचडॉग के रोल को मीडिया को वो बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, जो चीज अब बहुत कम देखने को मिलती है।
जी हाँ, वो एक मुसन्निफ भी थे और इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन भी थे और उनका ये पहलू भी जिंदगी का बड़ा नुमाया रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगी?
जी आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं।
मैंने कहा कि वो एक मुसन्निफ भी थे और इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन भी थे, यानी एक लिखारी थे वो।
जी वो एक ऑथर थे और 15 उन्होंने किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ बुक्स तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी आ गई थी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी एक किताब लिखी इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, तो उसमें ये इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया कि उन्होंने बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर कर दी है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, नेता लोग उनसे बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन ये चीज थी कि कभी भी उनकी कलम का जो जोर था वो धीमा नहीं पड़ा, लिखते वो आखिर तक रहे।